संध्या का समय था। बनारस के सेशन जिसके इजलास में हजारों आदमी जमा थे। लखनपुर के मामले से जनता को अब एक विशेष अनुराग हो गया था। मनोहर की आत्महत्या ने उसकी चर्चा सारे शहर में फैला दी थी। प्रत्येक पेशी के दिन नगर की जनता अदालत में आ जाती थी। जनता को अभियुक्तों की निर्दोषिता का पूरा विश्वास हो गया था। मनोहर के आत्मघात की विविध प्रकार से मीमांसा की जाती थी और सभी का तत्व यही निकलता था कि वही कातिल था और लोग तो केवल अदावत के कारण फंसा दिए गए हैं। डॉक्टर प्रियनाथ और इरफान अली की स्वार्थपरता पर खुली खुली चोटें की जाती थी। प्रेमशंकर की निष्काम सेवा की सभी सराहना करते थे। इस मुकदमे ने उन्हें बहुजन प्रिय बना दिया था। आज फैसला सुनाया जाने वाला था, इसलिए जमाव भी और दिनों से अधिक था। लखनपुर के लोग तो आए ही थे, आसपास के देहातों से लोग बड़ी संख्या में आ पहुंचे थे। ठीक 4 बजे जज ने तजवीज सुनाई। विशी सर साहब रिहा हो गए। बल्लाज और कादिर खां को काला पानी हुआ। शेष अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का सपरिश्रम कारावास दिया गया। बल्लाज ने विशेषर को सरोष नेत्रों से देखा, जो कह रहे थे कि अगर क्षण भर के लिए भी छूट जाओ तो खून पी लो। कादिर खां बहुत दुखी थे और उदास थे। यह तजवीज़ सुनी तो आंसू की कई बूंदें मोछों पर गिर पड़ी। जीवन का अंत ही हो गया। कब्र में पैर लटकाए बैठे थे, सजा मिली काले पानी की। चारों ओर कोहराम मच गया। दर्शकगण अभियुक्तों की ओर लपके, पर रक्षकों ने अब किसी को उनसे कुछ सुनने की आज्ञा न दी। मोटर तैयार खड़ी थी, 7 आदमी उसमें बैठाए गए। खिड़कियां बंद कर दी गई और मोटर जेल की तरफ चली। प्रेमशंकर चिंता और शोक की मूर्ति बने एक वृक्ष के नीचे खड़े सकरुण नेत्रों से मोटर की ओर ताक रहे थे, जैसे गांव की स्त्रियां सीमान पर खड़ी सजल नेत्रों से ससुराल जाने वाली लड़की को पालकी को देखती हैं। मोटर दूर निकल गई तो दर्शकों ने उन्हें घेर लिया और तरह तरह के प्रश्न करने लगे। प्रेमशंकर उनकी ओर मर्माहत भाव से देखते थे और कुछ उत्तर न देते थे। सहसा उन्हें कोई बात याद आ गई। जेल की ओर चले जनता का दल भी उनके साथ चला। सबको आशा था कि शायद अभियुक्तों को देखने का, उनकी बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। अभी यह लोग कचहरी के अहाते से निकले थे कि डॉक्टर इरफान अली अपने मोटर पर दिखाई दिए। आज जो गोरखपुर से लौटे थे, हवा खाने जा रहे थे। प्रेमशंकर को देखते ही मोटर रोक ले पूछे, कहिए आज तजवीज़ सुना दी गई? प्रेमशंकर ने रुखाई से उत्तर दिया, जी हाँ। इतने में सैकड़ों आदमियों ने चारों ओर से मोटर घेर लिया और एक तगड़े आदमी ने सामने आकर कहा, इन्हीं की गर्दन पर इन बेगुनाहों का खून है। सैकड़ों ने स्वरों से निकला, मोटर से खींच लो, जरा इसकी खिदमत कर दी जाए। जितने रुपए इसने लिए है सब इसके पेट से निकाल लो। उसी बृहत्काय पुरुष ने इरफान अली का पहुंचा पकड़कर इतने जोर से झटका दिया कि वह बेचारे गाड़ी से बाहर निकल पड़े। जब तक मोटर में थे क्रोध से चेहरा लाल हो रहा था, नीचे आकर धक्के खाए तो प्राण सूख गए। दया प्रार्थी नेत्रों से प्रेमशंकर को देखा। वह हैरान थे कि क्या करूं। उन्हें पहले कभी ऐसी समस्या हल नहीं करनी पड़ी थी और न श्रद्धा का ही कुछ प्रश्न ज्ञान था जो लोगों को उनसे थी। हाँ, वह सेवा भाव जो दीन जनों पर रक्षा के लिए उद्यत रहता था सजग हो गया। उन्होंने इरफान अली को दूसरे हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींचा और क्रोधान्वित होकर बोले, या क्या करते हो, हाथ छोड़ दो। एक बलवान युवक बोला, इनकी गर्दन पर गांव भर का खून सवार है। प्रेमशंकर, खून इनकी गर्दन पर नहीं, इनके पेशे की गर्दन पर सवार है। युवक, इनसे कहिए इस पेशे को छोड़ दें। कई कंठों से आवाज आई, बिना कुछ जलपान की इनकी अकल ठिकाने न आएगी। सैकड़ों आवाजें आई, हाँ हाँ लगे बेभाव भी पड़े। प्रेमशंकर ने गरज कर कहा, खबरदार जो एक हाथ भी उठा, नहीं तो तुम्हें यहाँ मेरी लाश दिखाई पड़ेगी। जब तक मुझसे खड़े होने की शक्ति है तुम इनका बाल विवाह का नहीं कर सकते। इस वीरोचित ललकार ने तत्क्षण असर किया। लोग डॉक्टर साहब के पास से हट गए। हाँ, उनकी सेवा सत्कार के ऐसे सुंदर अवसर के हाथ से निकल जाने पर आपस में कनाफुसी करते रहे। डॉक्टर साहब ने जो ही मैदान साफ पाया, कृतज्ञ नेत्रों से प्रेमशंकर को देखा और मोटर पर बैठकर हवा हो गए। हजारों आदमियों ने तालियां बजाई, भागा भागा। प्रेमशंकर बड़े संकट में खड़े पड़े थे। प्रति क्षण शंका होती थी कि ये लोग न जाने क्या उधम मचाए। किसी बग्घी या फिटिन को आते देखकर उनका दिल धड़कने लगता कि ये लोग उसे रोक न ले। वह किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, पर इसका कोई उपाय न सोचता था। हजारों झल्लाए हुए आदमियों को काबू में लाना कठिन था। सोचते थे, अब की तो मेरी धमकी ने काम किया, और कौन कह सकता है कि दूसरी बार भी वो उपयुक्त होगी। कहीं पुलिस आ गई तो अनर्थ ही हो जाएगा, अवश्य 2-4 आदमियों की जान पर आ बनेगी। वह निश्चिंताओं में डूबे आगे बढ़े। रास्ते में ही डॉक्टर प्रियनाथ का बंगला था। वह इस वक्त बरामदे में टहल रहे थे, टेनिस का रैकेट हाथ में था। शायद गाड़ी की राह देख रहे थे या भीड़ भाड़ देखी तो अपने फाटक पर आकर खड़े हो गए। सहसा किसी ने कहा, जरा इनकी भी खबर लेते चलो, सच पूछो तो इन्हीं महाशय ने बेचारों की गर्दन काटी है। कई आदमियों ने इनका अनुमोदन किया, हाँ हाँ पकड़ लो, जाने न पाए। जब तक प्रेमशंकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचते तब तक सैकड़ों आदमियों ने उन्हें घेर लिया। किसी वरिष्ठ युवक ने आगे बढ़कर डॉक्टर साहब के हाथ से रैकेट छीन लिया और कहा, बताइए साहब, लखनपुर के मामले में कितनी रिश्वत खाई? कई आदमियों ने कहा, बोलते क्यों नहीं, कितने रुपए उड़ाए थे? डॉक्टर महोदय ने चिल्ला चिल्ला कर नौकरों को पुकारना शुरू किया, किंतु नौकरों ने आना उचित समझा। एक आदमी बोला, यह बिना समझावन बुझावन के न बताएंगे। प्रियनाथ, मैं सबको जेल भिजवा दूंगा, रास्कल। डॉक्टर साहब ने भय दिखलाकर काम निकलना चाहा, पर यह समझे न कि साधारणतः जो लोग आंखों के इशारे पर कांप उठते हैं वे विद्रोह के समय गोलियों की भी परवाह नहीं करते। उनके मुंह से इतना निकलना था कि लोगों के तेवर बदल गए, शोर मचा न पाए, मार के गिरा तो देखा जाए। इतने में प्रेमशंकर डॉक्टर साहब के पास आकर खड़े हो गए। सैकड़ों लाठियां, छतरियां और छड़ियां उठ चुकी थी। प्रेमशंकर को सम्मुख देकर सबकी सब हवा में तनी रह गई। केवल एक लाठी न रुक सकी, वह प्रेमशंकर के कंधे में जोर से लगी। उसी बलिष्ठ नवयुवक ने डॉक्टर साहब को धिक्कार कर कहा, इनके पीछे क्या चोरों की तरह छिपे खड़े हो, सामने आ जाओ तो मजा चखा दो। खूब रिश्वतें ले लेकर खफीफ को शहीद और शहीद को खफीफ बनाया। अभी यह वाक्य पूरा न होने पाया था कि लोगों ने प्रेमशंकर को लड़खड़ा कर जमीन पर गिरते देखा। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, सबकी ओर अनिष्ट की सूचना हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, लोगों की उद्दंडता शंका में परिवर्तित हो गई। लोग पूछने लगे, यह किसकी लाठी थी, यह किसने मारा, उसके हाथ तोड़ दो, पकड़कर गर्दन में रोड़ दो, किसकी लाठी थी, सामने क्यों नहीं आता, क्या ज्यादा चोट आई। सहसा डॉक्टर प्रियनाथ ने उच्च स्वर से कहा, अधमना ही क्यों छोड़ दिया, एक लाठी और क्यों नहीं जड़ दी कि काम तमाम हो जाता। मूर्खों, तुम्हारा अपराधी तो मैं था, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। यह कहकर वह प्रेमशंकर के पास घुटनों के बल बैठ गया। घाव को भली भांति देखा, कंधे की हड्डी टूट गई थी। तुरंत रुमाल निकालकर कंधे में पट्टी बांधी, तब अस्पताल जाकर एक चारपाई लिवा लाए और प्रेमशंकर को उठाकर ले गए। हजारों आदमी अस्पताल के सामने चिंता में डूबे खड़े थे। सबको ये भय हो रहा था कि कहीं चोट ज्यादा ना आ गई हो, लेकिन जब डॉक्टर साहब ने मरहम पट्टी के बाद आकर कहा, चोट तो बहुत ज्यादा नहीं आई है, कंधे की हड्डी टूट गई है, लेकिन आशा के बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, तब लोगों के चित्त शांत हुए। एक एक करके सभी वहां से चले गए। लाला प्रभाशंकर को जो ही यह शोक संवाद मिला, वह बदहवास दौड़े हुए आए प्रेमशंकर के पास बैठकर देर तक रोते रहे। प्रेमशंकर सचेत हो गए थे, हाँ विषम पीड़ा से विकल थे। डॉक्टर ने बोलने या हिलने को मना कर दिया था, इसलिए चुपचाप पड़े हुए थे, लेकिन जब प्रभाशंकर को बहुत अधीर देखा तो धीरे से बोले, आप घबराइए नहीं, मैं जल्द अच्छा हो जाऊंगा, कंधों में दर्द हो रहा है, इसके सिवा मुझे और कोई कष्ट नहीं है। ये बातें सुनकर प्रभाशंकर को तस्कीन हुई। चलते समय उन्होंने डॉक्टर साहब के पास आकर वो बड़े विनीत स्वर से कहा, बाबू जी, यह लड़का मेरे कुल का दीपक है, आप इस पर कृपा दृष्टि रखिएगा, इसके प्राण बच गए तो यथाशक्ति आपकी सेवा करने में कोई बात न उठा रखूंगा। यद्यपि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तथापि अपने से जो कुछ हो सकेगा अवश्य आपकी भेंट करूंगा। प्रियनाथ ने कहा, लाला जी, आप यह क्या कहते हैं, आप इनकी सेवा शुश्रूषा में तन मन धन से न लगूँ तो मुझसे ज्यादा कृतज्ञ प्राणी संसार में न होगा। मेरे ही कारण इन्हें चोट आई है, अगर यह वहां न होते तो मेरी हड्डियों का भी पता न मिलता। इन्होंने जान पर खेल के मेरी प्राण रक्षा की, इनका एहसान कभी मेरे सिर से नहीं उतर सकता। तीन चार दिन में प्रेमशंकर इतने स्वस्थ हो गए कि तकिए सहारे बैठ सके, लकड़ी लेकर औषधालय के बरामदे में टहलने भी लगे। इनका कुशल समाचार पूछने के लिए प्रतिदिन शहर के सैकड़ों आदमी आते रहते थे। प्रेमशंकर सबसे डॉक्टर साहब के मुक्त कंठ से प्रशंसा करते, प्रियनाथ की सेवा भाव ने उन्हें मोहित कर दिया था। वह कई दिन में कई बार उन्हें देखने आते, कभी कभी समाचार पत्र पढ़कर सुनाते, उनके लिए घर में विशेष रीति से भोजन बनवाते। प्रेमशंकर मन में बहुत लज्जित होते थे कि ऐसे सज्जन, ऐसे देवतुल्य पुरुष के विषय में मैंने क्यों अनुचित संदेह किए। वह अपनी विमल श्रद्धा से उस अभक्त की पूर्ति कर रहे थे। एक सप्ताह बीत चुका था। प्रेमशंकर उदास बैठे सोच रहे थे कि इन दीन अभियुक्तों का अब क्या हाल होगा, मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, अपीलों का अभी तक कुछ निश्चय न हो सका और अपील होगी कैसे, इतने रुपये कहाँ से आएंगे, आजकल तो न्याय गरीबों के लिए एक अलभ्य वस्तु हो गया है, पग पग पर रुपये का खर्च, और यह क्या मालूम कि अपील का नतीजा हमारे अनुकूल होगा, कहीं यही सजाएं बहाल कर दी गई तो अपील करना निष्फल हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हो अपील करनी चाहिए, रुपया कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा, और कुछ न होता तो दुकान दुकान और घूम घूम कर चंदा मांगूंगा। दीनों से स्वभाव तो लोगों की सहानुभूति होती है, संभव काफ़ी धन हाथ आ जाए। ज्ञानशंकर को बुरा लगेगा, लगे इसमें मेरा कुछ बस नहीं, क्या उन्हें इस दुर्घटना की खबर न मिली होगी, आना तो दूर रहा, एक पत्र भी न लिखा कि मुझे तस्कीन होगी। वह इन्हीं विचारों में मग्न थे कि प्रियनाथ आ गए। बोले, आप इस समय बहुत चिंतित मालूम होते हैं, थोड़ी सी चाय पी लीजिए, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। प्रेमशंकर जी, नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं, आप मुझे यहाँ से कब तक विदा करेंगे। प्रियनाथ, अभी शायद आपको यहाँ एक हफ्ता नज़रबंद रहना पड़ेगा, अभी हाथ हड्डी के जुड़े में थोड़ी सी कसर है, और फिर ऐसी जल्दी क्या है, अभी तो आपका ही घर है। प्रेमशंकर, आप मेरे सिर पर उपकारों का इतना बोझ रखते जाते हैं कि शायद ही हिल सको, यह आपके कृपा स्नेह और शालीनता का फल है कि मुझे पीड़ा का कष्ट कभी जान ही नहीं पड़ा, मुझे याद ही नहीं कि इतनी शांति कहीं और मिली हो। आपकी हार्दिक संवेदना ने मुझे दिखा दिया कि संसार में भी देवताओं का वास हो सकता है, सभ्य जगत पर से मेरा विश्वास उठ गया था, आपने फिर से जीवित कर दिया। प्रेमशंकर की नम्रता और सरलता डॉक्टर महोदय के हृदय को दिनों दिन मोहित करती जाती थी। ऐसे शुद्धात्मा, साधु और निष्प्रिय पुरुष का श्रद्धा पात्र बनकर उनकी क्षुद्रताएं और मलिनताएं अपने आप ही मिटती जाती थी। वह ज्योति दीपक की भांति उनके अंतःकरण के अंधेरे को वान विच्छिन्न किए देती थी। इस श्रद्धा रत्न को पाकर वह ऐसे मुग्ध थे जैसे कोई दरिद्र पुरुष अनायास पे संपत्ति पा जाए। उन्हें सदैव यही चिंता रहती थी कि कहीं यह रत्न मेरे हाथ से निकल न जाए। उन्हें कई दिनों से यह इच्छा हो रही थी कि लखनपुर के मुकदमे के विषय में प्रेमशंकर से अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से प्रकट कर दें, पर इसका कोई अवसर न पाते थे। इस समय अवसर पाकर बोले, आप मुझ बहुत लज्जित कर रहे हैं। किसी दूसरे सज्जन के मुँह में से बातें सुनकर मैं अवश्य समझता कि वह मुझे बना रहा है। आप मुझे उससे कहीं ज़्यादा विवेक परायण और सच्चरित समझ रहे हैं जितना मैं हूँ। साधारण मनुष्यों की भांति लोभ से ग्रसित इच्छाओं का दास और इंद्रियों का भक्त हो, मैंने अपने जीवन में घोर पाप किए। यदि वह आपसे बयां करूँ तो आप चाहे कितने उदार क्यों न हो, मुझे तुरंत नज़रों में गिरा देंगे। मैं स्वयं अपने कुकृत्यों का पर्दा बना हुआ हूँ, इन्हें बाह्य आडंबरों से ढके हुए हैं। लेकिन इस मुकदमे के संबंध में जनता ने मुझे जितना बदनाम कर रखा है, इसका मैं भागी नहीं हूँ। मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि मुझ पर जो आक्षेप किए गए हैं वे सर्वथा निर्मूल हैं। स्वभाव संभव है हत्या निरूपण में मुझे भ्रम हुआ हो और अवश्य हुआ, लेकिन मैं इतना निर्दय और विवेकहीन नहीं हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए इन्हें निरापराधियों का गला काटता। यह मेरी दास वृत्ति है जिसने मेरे माथे पर अपयश का टीका लगा दिया। प्रेमशंकर ने ग्लानिमय भाव से कहा, भाई साहब, आपकी इस बदनामी का सारा दोष मेरे सिर पर है। मैं ही आपका अपराधी हूँ। मैंने दूसरों के कहने में आकर आप पर अनुचित संदेह किए, इसका मुझे जितना दुख और खेद है वह आपसे कह नहीं सकता। आप जैसे साधु पुरुष पर ऐसा घोर अन्याय करने के लिए परमात्मा मुझे न जाने क्या दंड देंगे, पर आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि मेरी अल्पज्ञता पर विचार कर मुझे क्षमा कीजिए। प्रेमनाथ के हृदय पर से एक बोझ सा उतर गया। प्रेमशंकर इसके दो चार दिन बाद हाजीपुर लौट आए। डॉक्टर साहब रोज संध्या समय उनसे मिलने आया करते। अब वह पहले से कहीं ज्यादा कर्तव्य प्रयाण हो गए थे। 10 बजे से पहले प्रातःकाल चिकित्सा भवन में आ बैठते, रोगियों की दशा ध्यान से देखते, उन्हें सांत्वना देते। इतना ही नहीं, पहले वह पूरी फीस लिए बिना जगह से हिलते न थे, अब बहुधा गरीबों को देखे देखने बिना फीस के ही चले जाते। छोटे छोटे कर्मचारियों से आधी ही फीस लेते, नगर की सफाई का नियमानुसार निरीक्षण करते। जिस गली या सड़क से निकल जाते, लोग बड़े आदर से उन्हें सलाम करते। चंद ही महीनों में सारे नगर में उनका बखान होने लगा। काशी का प्रसिद्ध समाचार पत्र गौरव उनका पुराना शत्रु था, पहले उन पर खूब चोटें किया करता था, अब वह भी उनका भक्त हो गया। उसने अपने एक लेख में आलोचना की, काशी के लिए एक परम सौभाग्य की बात है कि बहुत दिनों के बाद से हृदयवत्सल ऐसा सहृदय ऐसा कर्तव्यपरायण डॉक्टर मिला। चिकित्सा का लक्ष्य धनोपार्जन नहीं यशोपार्जन होना चाहिए, और महाराज महाशय प्रियनाथ ने अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया कि वह इस उच्चादर्श का पालन करना अपना ध्येय समझते हैं। डॉक्टर साहब को सुकृति का स्वाद मिल गया। अब तीनों की सेवा में उनका चित्त जितना उल्लसित होता था, उतना पहले संचित धन की बढ़ती हुई जनसंख्याओं से भी न हुआ था। यद्यपि धन की तृष्णा से वह अभिमुक्त नहीं हुए थे, पर कीर्ति लाभ की सदिच्छा ने धनलिप्सा को परास्त कर दिया। प्रेमशंकर के सम्मुख आते ही उनका हृदय ओस बिंदुओं से धुले हुए फूलों के सदृश निर्मल हो जाता, निखर उठता। उस सरल संतोषमय कामना रहे जीवन के सामने उन्होंने अपनी धन लालसा तुच्छ मालूम होने लगती थी। संतान की चिंता का बोझ कुछ हल्का हो जाता था। अब इस दशा में भी हम संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हैं, यशस्वी बन सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं, प्रेम और श्रद्धा के पात्र बन सकते हैं, तो फिर धन पर जान देना व्यर्थ है। उन्हें ज्ञात होता था कि जीवन सफल जीवन के लिए धन कोई अनिवार्य साधन नहीं है। उन्हें खेद होता था कि मेरी आवश्यकताएं क्यों इतनी बढ़ गई हुई हैं, मैं डॉक्टर होकर रसना का दास क्यों बना हुआ हूँ, सुंदर वस्त्रों पर क्यों मरता। इन्हीं के कारण तो मैं सारे नगर में बदनाम था, लोभी स्वार्थी निर्दय बना हुआ था और अब भी हूँ। लोगों को शंका होती है कि कहीं यह रोग को बढ़ाने दे, इसलिए कोई जल्दी मुझसे बुलाता न था। इन विचारों का डॉक्टर साहब के रहन सहन पर प्रभाव पड़ने लगा। एक दिन डॉक्टर साहब किसी मरीज को देखकर लौटते हुए प्रेमशंकर की कृषिशाला के सामने से निकले। 10 बज गए थे, धूप तेज थी, सूर्य की प्रखर किरणें आकाश मंडल को वाणों से छेदती हुई जान पड़ती थी। डॉक्टर साहब के जी में आया, देखता चलूं क्या कर रहे हैं। अंदर पहुंचे तो देखा कि वह अपने झोपड़े के सामने वृक्ष के नीचे खड़े गेहूँ के पोले बिखेर रहे थे। कई मजदूर लौनी कर रहे थे। प्रेमनाथ को देखते ही प्रेमशंकर झोपड़े में आ गए और बोले, धूप तेज है प्रेमनाथ, लेकिन आप तो इस काम में लगे हुए मानो धूप है ही नहीं। प्रेम, उन मजदूरों को देखिए, धूप की कुछ परवाह नहीं करते प्रिय, वे मजदूर हैं, इसके आदि हैं। प्रेम, हमें इस कृत्रिम जीवन ने चौपट कर दिया, नहीं तो हम भी ऐसे ही आदमी होते और श्रम को बुरा न समझते। प्रेमशंकर कुछ और कहना चाहते थे कि तुम दो वृद्धा सिर पर लकड़ी गट्ठे आई और पूछने लगी, सरकार लकड़ी ले लो। इन स्त्रियों के पीछे पीछे लड़के भी लकड़ी के बोझ लिए हुए थे। सबों के कपड़े तरबतर हो रहे थे, छाती और पसली की हड्डियाँ निकली हुई थी, ओठ सूखे हुए, देह पर मैल जमे हुए थे, उस पर सूखे हुए पसीने की धारियाँ बन रही थी। प्रेमशंकर ने लकड़ी के दाम पूछे, सबके गट्ठे उतरवा लिए, लेकिन रखा तो संदूक में पैसे न थे। गुमास्ता को रुपया बनाने को दिया। दोनों वृद्धाएं वृक्ष के नीचे छांव में बैठ गई और लड़के बिखरे हुए दाने चुन चुन कर खाने लगे। प्रेम शंकर को उन पर दया गई, थोड़े से मटर सब लड़कों को दिए। दोनों स्त्रियां आशीष देते हुए बोली, बाबूजी नारायण तुम्हें सदा सुखी रखे। इन बेचारों ने कब अभी कलेवा नहीं किया है। प्रेम तुम्हारा घर कहाँ है? एक बुढ़िया, सरकार ने लखनपुर का नाम सुना होगा। प्रियनाथ आपने गट्ठे देखे नहीं, सबों ने खूब कैंची लगाई है। प्रेमशंकर दरिद्रता सब कुछ करा देती है। वृद्धा से, तुम लोग इतनी दूर लकड़ी बेचने आ जाती हो? वृद्धा क्या करें, मालिक बीच में और कोई बस्ती नहीं है। घड़ी रात के चले हैं, दोपहरी हो गई, किसी पेड़ के नीचे पड़े रहेंगे, दिन ढलेगा तो सांस घर पहुँचेंगे। कर्म का लिखा भोग है, जो भी न करना पड़ता था वह मरते समय करना पड़ा। प्रेम आजकल गाँव का क्या हाल है? वृद्धा हाल क्या बताएं, सरकार जमींदार की निगाह टेढ़ी हो गई, सारा गांव बद गया, कोई जालिम गया, कोई कैद हो गया, उनके बाल बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। मेरे दो बेटे हैं, दो हल की खेती होती थी, एक तो डिमिल गया, दूसरे की साल भर के कुछ टो भी नहीं मिली, बैल थे वे चार बिना टूट गए। खेती बाड़ी कौन करे, बहुएँ हैं वे बाहर जा नहीं सकती, मैं भी उपले बेच कर ले आती हूँ, सबके मुँह में दाना पड़ता है। पोते थे उन्होंने भगवान से पहले ही ले लिया, बुढ़ापे में ये भोगना लिखा था। प्रेम तुम डुपट सिंह की माँ तो नहीं हो? वृद्धा हाँ सरकार, आप कैसे जानती? प्रेम ताउन के दिनों में जब तुम्हारे पोते बीमार थे तब मैं वहीं था, कई बेर हो आया हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम प्रेम शंकर है। वृद्धा ने थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया, दीनता की जगह लज्जा का हल्का सरंग चेहरे पर आ गया, बोली हाँ बेटा अब मैंने पहचाना। आंखों से अच्छी तरह सूझता नहीं, भैया तुम जुग जुग जियो, आज सारा गाँव तुम्हारा यश गा रहा है, तुमने अपनी वाली कर दी, पर भाग में जो कुछ लिखा था वह कैसे टलता। बेटा सारे गांव में हाहाकार मचा हुआ है, दुखरन भगत को जानते ही होगे, ये बुढ़िया उन्हीं की घरवाली है, पुरानी खाती थी नया रखती थी, घर में अब कुछ नहीं रहा। ये दोनों लड़के बंधु के हैं, एक रंगी का लड़का है और दोनों कादिर मियाँ के पोते हैं। न जाने क्या हो गया कि घर से मर्दों को जाते ही जैसे बरक्कत ही उठ गई। सुनते थे कि कादिर मियाँ के पास बड़ा धन है, पर इतने दिनों में क्या हाल हो गया कि लड़के मजदूरी न करें तो मुँह में मक्खी आ जाए। भगवान इस कल्बू में फैजू का सत्यानाश करे, इसने और भी अंधेर मचा रखा है। अब तक तो उसने गांव भर को बेदखल कर दिया होता, पर नारायण सुख को चौधरी का भला करे कि उन्होंने सारी बाकी कौड़ी पाई पाई चुका दी, पर अब की उन्होंने भी खबर न ली और अकेला आदमी सारे गांव को कहां तक संभाले। साल दो साल की बात हो तो निबाद है, यहाँ तो उम्र भर रोना है। कारिंदा चपरासी अभी से धमका रहे हैं कि अब की बेदखल करके तभी दम लेंगे। अब की साल तो कुछ आधे साझे में खेती हो गई थी, खेत निकल जाएंगे तो जाने क्या गति होंगी। कहते कहते बुढ़िया रोने लगी। प्रेमशंकर की आंखें भर आई थी, पूछा विशेषर शाह का क्या हाल है? बुढ़िया क्या जानो भैया, मैंने तो साल भर से उनके द्वार पर झांका भी नहीं, अब कोई उधर नहीं जाता, ऐसा आदमी क्या मुँह देखना पाप है, लोग दूसरे गांव से नून तेल लाते हैं वह भी अब घर से बाहर नहीं निकलता, दुकान उठा दिए, घर में बैठा न जाने क्या क्या करता है, जो दूसरों का गड्ढा खोदेगा उसके लिए कुआं तैयार है। देखा तो नहीं पर सुनते हुए जब से वह मामला उठा है उसके घर में किसी को चैन नहीं है, एक न एक पुराने के सिर भूत आया ही रहता है, ओझे से आने रात दिन जमा रहते हैं, पूजा पाठ जब तक हुआ करता है। एक दिन बिलासी से रास्ते में मिल गया था, रोने लगा, बहुत पछताता था कि मैं दूसरों की बातों में आकर यह कुकर्म किया। मनोहर उसके गले पड़ा हुआ है, मारे डर के सांस से किवाड़ बंद हो जाता है, रात को बाहर नहीं निकलता। मनोहर रात दिन उसके द्वार पर खड़ा रहता है, जिसको पाता है उसी को चपेट लेता है। सुनती हूँ अब गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में बसने वाला है। रामशंकर यह बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गया। मैं कितना परवाह हूँ, बेपरवाह हूँ, इन बेचारों को सजा पाए हुए साल भर होने को है, मैंने उनके बाल बच्चों को सुधी तक नहीं ली, और सब अपने मन में क्या कहते होंगे, ज्ञानशंकर से बात हार चुका हूँ, लेकिन अब वहाँ जाना पड़ेगा, अपने वचन के पीछे इतनी दुखारियों को मरने दूँ यह नहीं हो सकता, इनका जीवन मेरे वचन से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। अकस्मात बुढ़िया ने कहा, कहो भैया अब कुछ नहीं हो सकता, लोग कहते हैं अभी किसी और बड़े हाकिम के यहाँ फरियाद लग सकती है। प्रेमशंकर ने इसका उत्तर न दिया, धन का प्रबंध तो कठिन न था लेकिन उन्हें अपील से उपकार होने की बहुत कम आशा थी, वकीलों को भी यही रहा था, इसलिए प्रश्न को टालते आते थे। डॉक्टर साहब से उन्होंने अपील की चर्चा कभी न की थी। प्रियनाथ उनके मुख को ध्यान से देख रहे थे, उनके मन में भावों को भाप गए और स्पंजस से दूर करने के लिए बोले, बूढ़ी हाँ फरियाद लग सकती है, उसका बंदोबस्त हो रहा है, धीरज रखो, जल्दी अपील तैयार कर दी जाएगी। वृद्धा बेटा दूध ना हो पूतो पलो, सुनते हो कि बड़ा डॉक्टर था, उसने जमींदार से कुछ ले देकर इन गरीबों को फंसा दिया, न हो तुम दोनों उसे डॉक्टर के जाकर हाथ पर जोड़ो, कौन जाने तुम्हारी बात मान जाए, उसके आगे भी तो बाल बच्चे होंगे, क्यों हम गरीबों को बेकसूर मारता है, किसी की हाय बटोरना अच्छा नहीं होता। प्रेमशंकर जमीन में गड़े जाते थे। डॉक्टर साहब को जितना दुख हो रहा होगा अपने मन में कितने लज्जित हो रहे होंगे, कहीं बुढ़िया गाली न देने लगे, इसे कैसे चुप कर दूं। इन विचारों से वह बहुत विकल हो रहे थे किंतु प्रियनाथ के चेहरे पर उदारता झलक रही थी, नेत्रों से वात्सल्य का भाव प्रस्फुटित हो रहा था, पुस्कुराते हुए बोले, हम लोग उस डॉक्टर के पास गए थे, उसे खूब समझाया है तो लालची पर कहने सुनने पर राह पर आ गया है, अब सच्ची गवाही देगा। इतने में मस्ता पैसे लेकर आ गया। प्रेम शंकर ने लकड़ी के दाम दिए। बुढ़िया लकड़ी के साथ आशीर्वाद देकर चली गई। द्वार पर पहुंचकर उसने फिर कहा, भैया भूल मत जाना, धर्म का काम है, तुम्हें बड़ा जस होगा। उनके चले जाने के बाद कुछ देर तक प्रेमशंकर और प्रेमनाथ दोनों मौन बैठे रहे। प्रेमशंकर का मुंह संकोच से बंद न किया था डॉक्टर का लज्जा ने। सहसा प्रेमनाथ खड़े होकर निश्चयात्मक भाव से बोले, भाई साहब अवश्य अपील कीजिए, आप आज इलाहाबाद चले जाइए, आपके दृश्य ने मेरे हृदय को हिला दिया, ईश्वर ने चाहा तो अब भी सत्य की विजय होगी। डॉक्टर इरफान अली इस घटना के बाद हवा खाने न जा सके, सीधे घर की ओर चले। रास्ते पर उन्हें संशय हो रहा था, कहीं उन्होंने पदरियों से फिर मुठभेड़ न हो जाए, नहीं तो अब की जान के लाले पड़ जाएंगी। अब बड़ी खैरियत थी कि प्रेमशंकर मौजूद थे, नहीं तो इन बदमाशों के हाथ मेरे न जाने क्या दुर्गति होती। जब वह अपने घर सकुशल पहुंच गए, बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे तो इस समय की समस्या की आलोचना करने लगे। अब तक वह न्याय और सत्य के निर्भीक समर्थक समझे जाते थे, पुलिस के विरुद्ध सदैव उनकी तलवार निकली ही रहती थी, यही उनकी सफलता का तत्व था। वह बहुत अध्ययनशील, तत्वान्वेषी, तार्किक वकील न थे, लेकिन उनकी निर्भीकता इन सारी त्रुटियों पर पर्दा डाल दिया करती थी। पर इस लखनपुर वाले मुकदमे में पहली बार उनकी स्वार्थपरता की कलाई खुली। पहले बार प्राय पुलिस की हार कर भी जीत में रहते थे, जनता का विश्वास उनके ऊपर जमा रहता था, बल्कि और बढ़ जाता था। आज पहली बार उनकी सच्ची हार हुई, जनता का विश्वास उन पर टूट गया, लोकमत में ने उनका तिरस्कार कर दिया। उनके कानों में उपद्रवियों के शब्द गूंज रहे थे, इन लोगों का खून इन्हीं के गर्दन पर सवार है। इरफान अली उन मनुष्यों में न थे जिनकी आत्मा ऋषि लालसा के नीचे दबकर निर्जीव हो जाती है। वह सदैव अपने इष्ट मित्रों से कठिन होकर रोना रोया करते, उन्हें संदेह या आंसू उनके हृदय से निकलते थे। वह बार बार इरादा करते थे कि इस पेशे को छोड़ दे, लेकिन जुआरियों की प्रतिज्ञा के बाद उनका निश्चय विदृढ़ न होता था, बल्कि दिनों दिन वह लोभ में और भी डूबते जाते थे। उनकी दशा उस पथिक की सी थी जो संध्या होने के पहले ठिकाने पर पहुंचने के लिए कदम तेजी से बढ़ाता है। इरफान अली वकालत छोड़ने के पहले इतना धन कमा लेना चाहते थे कि जीवन सुख से व्यतीत हो, अतः वह लोभी मार्ग में और भी तीव्र गति से चल रहे थे। लेकिन आज की घटना ने उन्हें मर्माहत कर दिया। अब तक उनकी दशा उन रईसों की सी थी जो वहम की दवा किया करते थे, कभी कोई स्वादिष्ट आंवले बनवा लिया, कभी कोई सुगंधित अर्घ खिंचवा लिया और रुचि के अनुसार उसका सेवन करते रहे, किंतु आज उन्हें ज्ञात हुआ कि एक जीर्ण रोग से ग्रसित हूँ। अब अर्क और अवले से काम न चलेगा, इस रोग का निवारण तेज नस्तर और तीक्ष्ण औषधियों से होगा। मैं सत्य का सेवक बनता था, वास्तव में अपनी इच्छाओं का दास हूँ। प्रेमशंकर ने मुझे नाहक बचा लिया, जरा दो चार चोटें पड़ जाती तो मेरी आंखें खुल जाती। मुआज अल्लाह, मैं कितना स्वार्थी हूँ, अपने स्वार्थ के सामने दूसरों की जान की भी परवाह नहीं करता। मैंने इन मामले में आदि से अंत तक कपट व्यवहार से काम लिया, कभी मिसलों को गौर से नहीं पढ़ा, कभी जिरह के प्रश्नों में विचार नहीं किया, यहाँ तक कि गवाहों का बयान यादोपरांत न सुने, कभी दूसरे मुकदमे में चला जाता, कभी मित्रों से बात करने लगता था। मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया होता तो प्रियनाथ को चुटकियों पर उड़ा देता, मुखविट को दो चार जिरहों में उखाड़ सकता था। थानेदार का बयान भी कुछ ऐसा अप्रमाणिक न था, लेकिन मैंने तो अपने कर्तव्य पर कभी विचार ही नहीं किया। अदालत में इस तरह जा बैठता था जैसे कोई मित्र की सभा में जा बैठता हो। मैं इस पेशे को बुरा कहता हूँ, यह मेरी मक्कारी है, हमारी अनहित है जिसने इस पेशे को बदनाम कर रखा है। उचित तो यह है कि हमारी दृष्टि सत्य पर हो, इसके बदले हमारी निगाह सदैव रुपये पर रहती है। खुदा ने चाहा तो आइंदा से अब वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। हाँ, अब से ऐसा ही होगा, अब मैं प्रेमशंकर के जीवन को अपना आदर्श बनाऊंगा, संतोष और सेवा के सन्मार्ग पर चलूंगा। जब तक प्रेमशंकर औषधालय में रहे, इरफान अली प्राय नित्य उनका समाचार पूछने आया करते थे। उनके धैर्य और साहस पर डॉक्टर को आश्चर्य होता था, प्रेमशंकर के प्रति उनकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती जाती थी। अपने मुवक्किलों के साथ उनका व्यवहार अब अधिक विनयपूर्ण होता था, वह उनके मामले ध्यान से देखते, एक समय एक से अधिक मुकदमा न लेते, अधिक मुकदमे को इजलास पर छोड़कर दूसरे मुकदमे की पैरवी न करते भी थे, उन्होंने मानो शपथ ही खा ली थी। वह अपील करने के लिए बार बार शंकर को प्रेरित करते रहते थे, पर अपने असज्जनता को याद करके सब कुछ जाते थे। अंत में उन्होंने सीतापुर जाकर बाबू ज्वाला सिंह से इस विषय में परामर्श करने का निश्चय किया, किंतु वह महाशय अभी तक दुविधा में पड़े हुए थे। वह प्रेमशंकर को लिख चुके थे कि त्याग पत्र देकर शीघ्र ही आपकी सेवा में आता हूँ, लेकिन फिर कोई न कोई ऐसी बात आ जाती थी कि उन्होंने अपने इरादे को स्थगित करने को विवश होना पड़ता था। बात यह थी कि शीलमढ़ी उनके इस्तीफा देने पर राजी न होती थी। वह कहती, बला से तुम्हारे अवसर तुमसे अप्रसन्न है, तरक्की नहीं होती ना सही, तुम्हारे हाथों में न्याय का अधिकार तो है, अगर तुम्हारे विधाता अगर तुम्हारे व्यवहार से असंतुष्ट होकर तुम्हें पदच्युत कर दें तो तुम्हें अपील करनी चाहिए और चोटी के हाकिमों से लड़ना चाहिए। यह नहीं कि अफसरों से जरा तीव्र बदला और तुमने भयभीत होकर त्यागपत्र देने की ठान ली। तुम्हारी इस अकर्मण्यता से तुम्हारे कितने न्यायशील और आत्मविमानी सहकर्मियों वर्गियों की हिम्मत टूट जाएगी और वह भाग निकलने का उपाय करने लगेंगे। या विभाग सज्जनों की से खाली हो जाएगा, वही खुशामदी टट्टू हाकिमों और इशार पर नाचने वाले बाकी रह जाएंगे। ज्वाला सिंह इस दलील का कोई जवाब न दे सके थे। जब डॉक्टर इरफान अली सिर पर जा पहुंचे तो वह अपनी शिथिलता और अधिकार प्रेम का दोष शीलमणि पर रखकर अपने को मुक्त न कर सके। शीलमणि समझ गई थी कि अब उन्हें रोकना कठिन है, मेरी एक न सुनेंगे। जो ही अवसर मिला उन्होंने ज्वाला सिंह से पूछा, डॉक्टर साहब को क्या जवाब दिया? ज्वाला सिंह, जवाब क्या देना, इस्तीफा दिए देता हूँ, अब हीरा हवाली करने से काम न चलेगा। अब तक मैं न जाऊँगा, बाबू प्रेमशंकर कुछ न कर सकेंगे। दुर्भाग्य से वह मुझ पर इससे कहीं ज़्यादा विश्वास करते हैं जिसके योग्य मैं हूँ। अपील की अवधि बीत जाएगी तो कुछ बनाए न बने की अपील के सफल होने की बहुत कुछ आशा है, और यदि मेरे सदुपयोग से कई निरपराधों की जान बचे तो मुझे अब एक क्षण में विलंब न करना चाहिए। शीलमणि, तो अधिक दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? ज्वाला सिंह, अब तो जानबूझ कर अनजान बनती हो, वहाँ मुझे कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ेंगी जो दासत्व की बेड़ियाँ पहने भी नहीं कर सकता। रुपए के लिए चंदे मांगना, वकीलों से मिलना जुलना, लखनपुर वालों के कष्ट निवारण की आयोजना करना, यह सभी काम करने पड़ेंगे। पुलिस वाले की निगाह पर चढ़ जाऊंगा, अधिकारी वर्ग तन जाएंगे, तो इस बेड़ी को काठी क्यों न दूं? मुझे पूरा विश्वास है कि स्वाधीन होकर जितनी जाति सेवा कर सकता हूं उतनी इस दशा में कभी न कर सकूंगा। शीलमणि बहुत देर तक उनके तर्क वितर्क करते रहे, अंत में क्रुद्ध होकर बोली, जो इच्छा हो करो, मुझे क्या करना है, जैसा सूखा सावन वैसा हरा भादू। आप ही पछताओगे, अब सब आदर सम्मान तभी तक है जब तक हाकिम। जब जाति सेवकों में जा मिलोगे तो कोई बात भी न पूछेगा, यहाँ वहाँ सबके सब सज्जन ही भरे हुए हैं, अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। प्रेम शंकर की तो मैं नहीं कहती, वह देवता है, लेकिन जाति सेवकों में तुम्हें सैकड़ों आदमी ऐसे मिलेंगे जो स्वार्थ के पुतले हैं, सेवा भेष बनाकर गुलछर्रे उड़ाते हैं, उन्हें स्प्री पवित्र आत्माओं की वहाँ फूटी आंखें नहीं दे सकते, तुम्हें उनके बीच में रहना दुर्भर हो जाएगा। उनका न्याय कपट व्यवहार और संकीर्ण देख कर तुम कूढ़ोगे पर उसे कुछ कह ना सकोगे, इसलिए जो कुछ करो सोच समझ कर करो। ये वही बातें थी जो ज्वाला सिंह ने स्वयं शीलमणि से कही थी, कदाचित यही बातें सुन सुनकर वह इस्तीफे के विपक्ष में हो गई थी। पर इस समय यह निराशाजनक बातें न सुन सके उठकर बाहर चले आए और उसी आवेश में आकर त्यागपत्र लिखना शुरू कर दिया।